लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्गीय रानी प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने स्वर्गरोहण पर्व के अवसर पर स्वर्गीय रानी प्रार्थना हेतु संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो। ओजी इन इटालिया ए मोल्टी आल्ट्री पाएसी सी सेलेब्रा लासेंसियोने देल सिग्नोरे।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज इटली और कई देशों में स्वर्गारोहण का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन यह हमारे लिए कई सवालों को उत्पन्न करता है। हम कम से कम दो सवालों पर चिंतन करेंगे। पहला, पृथ्वी से यीशु के चले जाने को हम त्योहार की तरह क्यों मनाते हैं? उनका हमारे बीच से जाना दुख की घड़ी स्वरूप देखा जा सकता है, लेकिन हम इस विदाई को खुशी के रूप में क्यों मनाते हैं? यह हमारे लिए पहले सवाल के रूप में आता है। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा कि यीशु अब स्वर्ग में क्या करते हैं? संत पापा फ्रांसिस ने इसे त्योहार के रूप में मनाए जाने की व्याख्या करते हुए कहा,
perché con l'ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne in cielo, la prima volta,
क्योंकि स्वर्गारोहण में कुछ नई और सुंदर बातें होती हैं। यीशु हमारी मानवता, हमारे शरीर को स्वर्ग ले चलते, जो पहली बार होता है। वे हमारे शरीर को अपने पिता ईश्वर के सामने ले चलते हैं। वह मानवता जिसे धारण कर उन्होंने हमारी मानवता में प्रवेश किया, वे उसे वहाँ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रखते हैं। पुनर्जीवित यीशु आत्मा के रूप में नहीं रहते, वरन वे मानव शरीर, हाड़ मांस सभी रूपों में हमारे बीच व्याप्त रहते हैं। वे ईश्वर के रूप में भी ऐसे ही रहते हैं। संत पापा ने कहा, हम कह सकते हैं कि स्वर्गारोहण के दिन से ईश्वर अपने में परिवर्तित हो जाते हैं। वे केवल आत्मा नहीं रह जाते हैं, बल्कि अपने प्रेम के खातिर वे हमारी तरह शरीर में हमारी मानवता को सदैव वहन करते हैं। इस भांति यह हमारे लिए उस स्थान की ओर इंगित कराता है जहां हमारी प्रतीक्षा की जाती है, जो हमारा असल निवास है। इस भांति एक प्राचीन आचार्य विश्वास के संबंध में लिखते हैं, यह कितना शानदार समाचार है। वे जो हमारे लिए मानव बने, अपने बाद आने वाले भाइयों को अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु स्वयं अपने को अपने पिता के सम्मुख मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
E questo oggi festeggiamo la conquista del cielo. Gesù che torna al Padre ma con la nostra umanità.
अतः आज हम स्वर्ग विजयी का त्योहार मनाते हैं, जहाँ यीशु ख्रिस्त अपने पिता के पास हमारी मानवता में वापस लौटते हैं। इस भांति स्वर्ग को हम कुछ हद तक अपने लिए पहले ही खुला पाते हैं। यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोला और उनका शरीर वहाँ है। संत पापा ने दूसरे सवाल, यीशु वहाँ क्या करते हैं के बारे में कहा कि वे हमारे लिए पिता के सामने उपस्थित हमारी मानवता को उनके सम्मुख निरंतर प्रस्तुत करते रहते हैं।
Lui sta per noi davanti al Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al Padre prega così.
वे अपने घावों को उन्हें दिखलाते हैं. अपने इस चिंतन को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यीशु अपने घावों को पिता को दिखलाते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. मानवता के लिए मैंने यह दुख सहा है, आप कुछ कीजिए. वे अपने पिता को मुक्ति की कीमत जिससे उन्हें चुकानी पड़ी दिखलाते हैं. यह पिता को द्रवित करता है. संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ. आप स्वयं इसके बारे में विचार करें. यीशु इस भांति हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. उन्होंने हमें नहीं छोड़ा है. वास्तव में स्वर्ग चढ़ने के पूर्व, जैसे कि आज का सुसमाचार हमें कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के अंत तक.
È sempre con noi, ci guarda, è sempre vivo con noi per intercedere. Per intercedere a nostro favore.
वे सदा हमारे साथ हैं, वे हमारी ओर देखते हैं और सदैव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. वे अपने घावों को अपने पिता को दिखलाते हैं, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वे हमारे लिए पिता से अर्जी करते हैं. वे अपने पिता और हमारे पिता के सामने एक बेहतर निवास में हैं, जहां वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. संत पापा ने कहा कि मध्यस्थता करना महत्वपूर्ण है. विश्वास इसमें हमारी मदद करता है, जहां हम अपनी आशा को नहीं खोते, निराश नहीं होते हैं.
Davanti il padre c'è qualcuno che ti fa vedere le piaghe e intercede.
पिता के सामने हमारे लिए कोई है जो अपने घावों को दिखलाता और हमारे लिए विनय करता है. माता मरियम जो स्वर्ग की रानी है, अपनी प्रार्थना की शक्ति से इसमें हमारी मदद करें. इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासी समुदाय के साथ स्वर्गीय रानी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
स्वर्गीय रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने सबों का ध्यान सूडान की ओर आकर्षित कराते हुए कहा,
È triste, ma a un mese dallo scoppio delle violenze in Sudan, La situazione continua ad essere grave.
एक महीना पहले शुरू हुई सूडान में हिंसा की स्थिति गंभीर बनी हुई है. समझौता हेतु आग्रह करने के साथ ही उन्होंने हथियारों की रोकथाम का आह्वान किया. संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इस संबंध में वार्ता की हर संभव कोशिश करें, जिससे लोगों की मुसीबतें दूर हों. इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन युद्धग्रस्त पीड़ितों की भी याद की. आज विश्व संचार दिवस मनाया जाता है, संत पापा ने कहा, जिसकी विषय वस्तु हृदय से बोलना है. यह हृदय है जो हमें खुला रहने और वार्ता करने को प्रभावित करता है. संत पापा ने सभी पत्रकारों को उनके व्यावसायिक कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए इस बात की आशा व्यक्त की कि वे सच्चाई और जन सामान्य की भलाई हेतु अपने कार्यों को जारी रखें. संत पापा ने समग्र मानवीय विकास हेतु गठित परम धर्म पीठ समिति के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए कहा,
ओ जी, इनिशिया ला सेटिमाना लाउदातो सी.
आज से लाउदातो सी सप्ताह की शुरुआत हो रही है. हम पृथ्वी सामान्य घर की देख रेख करने हेतु सहयोग करें. संत पापा ने एमिलिया रोमानिया में आए जलजले की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए इस प्रयास में एक साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों को अपनी निकटता प्रदान की. इसके उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन किया और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित की.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Per favore, non dimenticatevi. Buon pranzo e arrivederci.
आसमान के पार जाएंगे।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में स्लोवेनिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्रीमती नतासा पीर्क मुसर से मुलाकात की, जहां उन्होंने सकारात्मक द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन में युद्ध और पश्चिमी बाल्कन में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक द्विपक्षीय संबंधों एवं समाज में कैथोलिक कलीसिया के योगदान के लिए प्रशंसा व्यक्त की गई थी। यूरोपीय देश की आधी से अधिक आबादी कैथोलिक के रूप में पहचान रखती है। बातचीत के दौरान यूक्रेन में युद्ध और इसके वैश्विक परिणामों के साथ साथ पश्चिमी बाल्कन में राजनीतिक स्थिति और इस प्रक्रिया में क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं सहित यूरोपीय एकीकरण का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रथा के अनुसार संत पापा और राष्ट्रपति ने उपहारों का आदान प्रदान किया। संत पापा ने उन्हें सोशल लव नामक एक कांस्य की आकृति दी, जिसमें एक बच्चे द्वारा दूसरे को उठाने में मदद करने का चित्रण किया गया है। शिलालेख के साथ अमोरे अयुतारे, मदद करना प्यार है, लिखा हुआ है। संत पापा ने फरवरी 2019 में अबू धाबी में हस्ताक्षरित मानव भ्रातृत्व के दस्तावेज शांति के लिए अपना 2023 का संदेश और 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान स्टासियो ओर्बिस की पुस्तक भेंट की। स्लोवेनियाई राष्ट्रपति ने संत पापा को कुछ स्लोवेनियाई शहद उत्पाद और प्रसिद्ध स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालक एंटोन जसना के मधुमक्खी के छत्ते के मॉडल की एक प्रतिकृति भेंट की। संत पापा के साथ मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंधों के सचिव माध्यमाध्यक्ष पोल रिचर्ड गल्लाघेर के साथ मुलाकात की। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 22 मई को वाटिकन के संत पापा पोल सप्तम सभागार में बुलाहटिया परिवार के करीब 2000 सदस्यों से मुलाकात की, जो अपने संस्थापक संत जस्टिन मारिया रसोलिलो की संत घोषणा के एक साल बाद रोम की यात्रा पर हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, वाटिकन में संत जस्टिन मारिया रसोलिलो बुलाहटों के प्रेरित और आपके बुलाहटिया परिवार के संस्थापक की संत बनने की एक साल बाद आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सालगिरह मनाने का मतलब न केवल ईश्वर के उपहारों और यात्रा की सफलता के लिए आभार प्रकट करना ही नहीं है, बल्कि खुद से पूछना है कि हम वर्तमान के लिए क्या प्रकाश कर सकते हैं और संत जस्टिन की गवाही हमें भविष्य के लिए कौन सी विरासत स्वीकार करने के लिए कहती है। संत पापा ने कहा कि उनका प्रेरित कार्य सभी बुलाहटों के लिए एक सेवा प्रदान करना है। ये करिश्मा युवा जस्टिन जब सेमिनारियन थे तभी उसने अपने दिल में दृढ़ता से बुलाहट की देखभाल करने की इच्छा को महसूस किया था, विशेष रूप से पुरोहिताई और समर्पित जीवन के लिए, और आज भी इसकी बहुत आवश्यकता है। संत जस्टिन को देखते हुए संत पापा ने 3 मार्ग को इंगित किया, प्रार्थना, उद्घोषणा और मिशन। संत पापा ने कहा, प्रार्थना जो हमारी सभी गतिविधियों और सभी प्रेरित कार्यों का मूल है, क्योंकि जब हम मनन चिंतन और आराधना की भावना में प्रवेश करते हैं तो प्रभु हमें बदल देते हैं और हम रास्ते में मिलने वालों के लिए पिता ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब बन जाते हैं, नए उज्जवल स्वागत करने वाले आनंदित व्यक्ति बन जाते हैं। जब हम इस तरह बन जाते हैं तो हम सबसे पहले बुलाहटों की सेवा करते हैं, विशेष रूप से युवा लोग। हमारे जीने के तरीके, हमारे हाव भाव और हमारे द्वारा चुने गए जीवन से आकर्षित होते हैं। वे ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं। हमारे चेहरों पर वे उनकी कोमलता और उनके प्यार को देखते हैं जिनके लिए हमने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। संत पापा ने उनके प्रेरित कार्य उद्घोषणा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उनके संस्थापक जस्टिन ने दैनिक उपदेश के अनुसंधान की बुलाहट की सतत संस्कृति की बात की, विशेष रूप से धर्म शिक्षा के शिक्षण की सिफारिश की। यह एक संकेत है जो इसके महत्व को बरकरार रखता है और उनके करिश्मे को सामयिक बनाता है। दरअसल आज के सांस्कृतिक संदर्भ में जबकि ईश्वर की उपस्थिति का भाव लुप्त हो रहा है और विश्वास कमजोर हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि लोग, विशेषकर युवा लोग, अपने जीवन के अर्थ और दिशा को समझने में असमर्थ हों। ऐसी परिस्थिति में हम सुसमाचार प्रचार की ओर लौटने की आवश्यकता को देखते हैं। वचन की घोषणा करना विश्वास की सामग्री को एक सरल और भावुक तरीके से संप्रेषित करना और लोगों को आत्म मंथन करने में साथ देना। संत पापा ने उन्हें याद दिलाया कि वे मिशनरी भावना को हमेशा विकसित और नवीनीकृत करें। उधर रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन को F-16 लड़ाकू जेट की आपूर्ति करता है तो उसे भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है। यह चेतावनी संयुक्त राज्य द्वारा घोषित किए जाने के बाद आई कि वह अपने सहयोगियों को यूक्रेन में सैन्य विमानों को वितरित करने की अनुमति देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के समूह में गले लगाया। आपको देखकर अच्छा लगा और आप यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, कहते हुए सुनक ने जेलेंस्की की पीठ पर थपथपाया, जिन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह यूक्रेन के लिए एक अच्छा दिन था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर G7 में सीखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगियों को कीव को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए F-16 सहित यूक्रेन को लड़ाकू जेट देने की अनुमति देगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिविन ने सुरक्षा चिंताओं के बीच स्पष्ट समय रेखा प्रदान किए बिना पत्रकारों को आगामी डिलीवरी की पुष्टि की। उन्होंने कहा, जैसा कि आने वाले महीनों में प्रशिक्षण लड़ाकू पायलटों का सामने आएगा, हम अपने सहयोगियों के साथ यह निर्धारित करने के लिए काम करेंगे कि कब विमान वितरित किए जाएंगे, कहाँ कौन उन्हें वितरित करेगा और कितने। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।